पृष्ठ संख्या 202, कुकुर मुत्ता। कुकुर मुत्ता की ठीक ठीक रचना तिथि 3/4/41 दी हुई है। इसका सामान्य अर्थ यही हो सकता है कि उक्त तिथि को निराला ने कुकुर मुत्ता कविता को अंतिम रूप दिया होगा। कविता का पूर्वार्ध अगले महीने हंस मई 41 में छपा। अब तक पृष्ठ संख्या 203, कुकुर मुत्ता के कुल 4 संस्करण हो चुके हैं। पहला संस्करण युग मंदिर उन्नाव से, दूसरा श्री राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से, तीसरा किताब महल इलाहाबाद से और चौथा लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से। इसका संपादन और भूमिका लेखन मैंने किया है। युग सुंदर उन्नाव वाले संस्करण में भूमिका के नीचे निराला के हस्ताक्षर के साथ 4/6/42 प्रकाशन तिथि पड़ी हुई है। उपर्युक्त रचना तिथि 3/4/41 भी इसी संस्करण में कविता के नीचे दी हुई है। इस तरह लिखे जाने के लगभग 1 वर्ष बाद कविता पुस्तकाकार प्रकाशित हुई थी। कुकुरमुत्ता के इस पहले संस्करण में कुकुरमुत्ता कविता के अलावा 7 दूसरी कविताएं भी शामिल हैं। 1 गर्म पकौड़ी, 2 प्रेम गीत, 3 रानी और कानी, 3 खजूहरा, 5 मास्को डायलॉग्स, 6 स्फटिक शिला और 7 खेल। इनमें केवल खजूहरा को छोड़कर शेष सभी कविताओं के नीचे रचना तिथि दी हुई है। इससे यह विदित होता है कि ये सभी कविताएं 39 से 42 के बीच की लिखी हुई हैं। इस प्रकार कुकुरमुत्ता का यह पहला संस्करण एक कविता संग्रह है, न कि एक लंबी कविता पुस्तक। बाद में निराला ने इस संस्करण की उपयुक्त 7 कविताएं अपने एक अगले काव्य संग्रह नए पत्ते प्रकाशन वर्ष 46 में शामिल कर ली और उसके बाद कुकुरमुत्ता कविता का स्वतंत्र संशोधित 2रा संस्करण श्री राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से जुलाई 48 में प्रकाशित हुआ। इस 2रे संस्करण में भूमिका भी अलग से दी गई है और पहले संस्करण की भूमिका, जिसका शीर्षक जियाफत दिया गया था, को निराला ने इसमें देने की जरूरत नहीं समझी है। इन दोनों भूमिकाओं के बारे में हम आगे विचार करेंगे। इस 2रे संस्करण में कुकुरमुत्ता एक लंबी कविता की पुस्तक है, काव्य संग्रह नहीं। किताब महल इलाहाबाद से प्रकाशित 3रा संस्करण प्रकाशन वर्ष 52 इसी 2रे संस्करण की अनुवृत्ति है। विषय वस्तु शिल्प संवेदनागत एकतनता और बदलाव, भाषिक संरचना और अभिव्यक्ति की सर्वथा नई एकान्विति के कारण कुकुरमुत्ता के पहले संस्करण की कविताओं का चयन अद्भुत रूप से महत्वपूर्ण है। इन 8ों कविताओं का मिजाज बिल्कुल एक सा है। उनकी ताजगी, उनमें शब्द बंध के नए प्रयोग, उनकी गद्यात्मकता और सपाट अकाव्यात्मकता में से रिसने वाला नए ढंग का कवित्व, भाषा का छिद्रा खुला संगठन, अंदर तक चीरता हुआ व्यंग्य, उन्मुक्त हास्य और कठोरता के कवच में छिपी अगाध अप्रत्यक्ष करुणा तथा उपेक्षित के उन्नयन के प्रति गहरी आस्था, निराला की रचना सक्षमता और काव्य दृष्टि के इस नए आयाम को अपने सफलतम रूप में हमारे सामने उद्घाटित करती है। सामान्य के संस्पर्श से अभिषिक्त सच्ची कविताओं का इतना लघु किंतु सर्वांग संपूर्ण संग्रह उस युग में और उसके पृष्ठ संख्या 204 बाद भी दूसरा नहीं प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की कविताएं जैसे हिंदी कविता की भाव संपदा की संपूर्ण परंपरा, कल्पना की उच्छलता और कथा कथित अनुभव समृद्धि के छलावे पर सामूहिक रूप से प्रहार करती हैं, लेकिन यह प्रहार निराला की अपनी ही या अपने 2रे समकालीन कवियों की स्थापित मान्यता प्राप्त लोकप्रिय और समर्थ काव्यवृत्ति को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इस नई शक्तिमत्ता, सार्थकता और इतिहास की इस नई पहचान को उतनी ही मूल्यवत्ता और महत्ता से स्वीकृत कराने के एक आस्थाशील हट के रूप में भी है। जैसा कि हम शुरू में ही देख चुके हैं, इन कविताओं का रचनाकाल 39 से 42 के वह वर्ष हैं जिनमें हिंदी कविता और अन्य विधाओं में भी प्रगतिशील आंदोलन का दौर दौरा था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह बात कही गई है कि निराला के कुकुरमुत्ता की कविताएं इसी प्रगतिशील विचारधारा और आंदोलन की उपज हैं। इसमें कुछ सच्चाई अवश्य है, लेकिन इसी को पूर्ण सत्य मान लेने से एक भ्रामक व्याख्या के पनपने की संभावना अधिक हो जाएगी। यह विचार प्रगतिवादी खेमे के आलोचकों को अतिवाद की इस सीमा तक ले गया है कि निराला अपनी उन दिनों की रचनाओं में मार्क्सवाद से पूर्णतया प्रभावित थे। यह निराला के विराट व्यक्तित्व में अंतर्निहित उपेक्षित और भारतीय जनसाधारण के प्रति उनकी स्वभावगत सांसारिक निष्ठा को झुठलाना और उसका उपहास करना है, जिसकी व्याख्या हम पिछले पन्नों में कर चुके हैं। अगर ऐसा ही है तो भिक्षुक या दीन जैसी कविताएं क्यों लिखी गईं? क्योंकि तब तो हिंदी में किसी प्रगतिशील आंदोलन की आहट भी नहीं मिली थी। दरअसल निराला ने उपेक्षित के उन्नयन की अपनी स्वभावगत और रचनात्मक संवेदना को मार्क्सवाद की विचार सरणियों की रोशनी में और भी सशक्त और साफ ढंग से पहचान लिया। इससे ज्यादा प्रगतिशील आंदोलन का उन पर कोई प्रभाव बताना सीधी सीधी ज्यादती है। कुकुरमुत्ता के इस पहले संस्करण की कविताओं में कुकुरमुत्ता के अतिरिक्त जो 7 कविताएं शामिल की गई हैं, वह काव्य अभिजात्य से मुक्ति के प्रयास के सफलतम प्रतिफलन हैं। विधवा, तुड़ती पत्थर, भिक्षुक, दीन इत्यादि कविताओं से कुकुरमुत्ता की कविताएं संवेदना और भाषागत विकास की दृष्टि से काफी आगे की कविताएं हैं। निखालिस और उफनती हुई करुणा, गहन गंभीर दुख और निराशा से आगे चलकर इन कविताओं में व्यंग्य और हास्य का अद्भुत सम्मिश्रण मिलता है। उनका यह व्यंग्य कई स्तरों पर प्रतिफलित होता है। प्रेम के प्रसंग में निराला प्रिययामिनी जागी की भूमिका से उठकर पनिहारिन के प्रेम संगीत का वर्णन करते हैं। इसी तरह ब्राह्मण की पकाई घी की कचौड़ी छोड़कर वह तेल में छनी, पृष्ठ संख्या 205 हुई प्याज की कुरकुरी पकौड़ी पर उतर आते हैं। ये दोनों कविताएं भी अपने ढंग से गहरे प्रतीकात्मक स्तर पर आभिजात्य का भयंकर उपहास करती हैं, चाहे वह प्रेम प्रसंगों का आभिजात्य हो या हजारों साल से चली आती द्विज संस्कृति की श्रेष्ठता और उसके दबाव का। कवि अत्यंत निश्चल हास्य के द्वारा आभिजात्य के इन प्रसंगों से अपनी मुक्ति की घोषणा करता है। गर्म पकौड़ी, अये गर्म पकौड़ी, तेल की भुनी नमक मिर्च मिली, अये गर्म पकौड़ी, मेरी जीभ जल गई, सिसकियां निकल रहीं, लार की बूंदें कितनी टपकी, पर दाढ़ तले तुझे दबा ही रखा मैंने, कंजूस ने जो कौड़ी। पहले तूने मुझको खींचा, दिल लेकर फिर कपड़े सा फींचा, अरी तेरे लिए छोड़ी, बहमन की पकाई मैंने घी की कचौड़ी। कितने साधारण से प्रसंग से कवि ने कितनी मार्मिक बात कह दी है। यह वही जीवन विष विषम लिया, जनता के हृदय जिया वाला प्रसंग है। यह वही बाहर कर दिए जाने की गहरी अनुभूति है। यह वही ऐतिहासिक पहचान के फलस्वरूप परंपरा की पंक्ति से निष्कासन का एहसास है। यह वही आभिजात्य के प्रसंगों से अलग हटकर एक नया प्रतिपक्ष रचने के परिणाम का संकेत है। यह वही जनसाधारण की पहचान और उसमें अपनी निष्ठा से मिलने वाले संताप और एकाकीपन की अनुभूति है। लेकिन यहाँ दैन्य जनित करुणा या भावनात्मकता का उफान नहीं है। सारी स्थिति का एक सहज तटस्थ स्वीकार है। उसमें मजाक भी है और मजाक मजाक में बड़ी बात भी है। बहमन की पकाई घी की कचौड़ी तो छोड़ दी, लेकिन इस गर्म पकौड़ी ने भी जीव जलाने के अलावा कोई स्वाद नहीं दिया। फिर भी मैंने उसे अपनी दाढ़ में दबा ही रखा। मैंने अपनी इस पहचान को भुलाया नहीं। मैंने उपेक्षित के उन्नयन में अपनी पृष्ठ संख्या 206 निष्ठा छोड़ी नहीं, लेकिन इस मार्मिकता को एक तरह से सहज मजाक के रूप में रखा गया है कि अक्सर उसकी गहराई पर लोगों की नज़र नहीं जाती। इसी तरह प्रेम संगीत के प्रसंग को भी पाठक हल्की फुल्की कविता मान बैठता है, जब तक कि निराला की रचना प्रक्रिया के इन सारे संदर्भों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, इन कविताओं का मर्म ठीक ठीक समझना कठिन होगा। अमल कोमल तन तरुणी, संदर्भ में ही पनिहारिन के बड़के मटके को समझा जा सकता है। बहमन का लड़का मैं प्यार उसे करता हूँ, जात की कहारिन वह मेरे घर की पनिहारिन वह आती है होते तड़का, उसके पीछे मैं मरता हूँ। कोयल सी काली अरे चाल नहीं उसकी मतवाली, ब्याह नहीं हुआ तभी भीड़ का दिल मेरा और आहें भरता हूँ। रोज आकर जगाती है सबको, मैं ही समझता हूँ इस ढब को, ले जाती है मटका बड़का, मैं देख देख धीरज धरता हूँ। इतने ठेठ देसी लहजे में प्रेम का चित्रण शायद किसी कवि ने पहले नहीं किया। इसमें उस सारी लफंगी शब्दावली का प्रयोग निराला ने किया है जिसका प्रयोग सभ्य समाज में वर्जित है। यह नौकरों के क्वार्टरों में जाकर रखैले बनाने की जगह उससे बराबरी के स्तर पर प्रेम करने की बात है। ना तो वह कोमल है, ना उसकी चाल में लचक है, वह कोयल सी काली कलूटी बैंगन लूटी है, यानी कि कविता की नायिका बनने योग्य उसमें कोई गुण नहीं है। उसे निराला अपनी इस कविता में उतारते हैं। यह प्रसंगगत परिवर्तन और कविता में उसकी वेलाक प्रतिष्ठा दर्शनीय है। इसी तरह छदम भारतीय कम्युनिस्टों या फैशन के बहाव में आकर शौकिया मास्को डायलॉग्स हाथ में लेकर चलने वाले दोहरे चरित्र वाले मूर्ख और हिपोक्रेट श्रीयुत गिडवानी का बड़ा ही भयंकर मजाक निराला ने मास्को डायलॉग्स कविता में उड़ाया है। ऐसे डींग हाँकने वाले मूर्खों और स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है। जोहर पृष्ठ संख्या 207 चीज का इस्तेमाल करने में माहिर हैं। हाथ में मास्को डायलॉग्स लेकर घूमने वाले ऐसे लोग सारे समाज को सिर्फ धेले के आधार पर ही पहचानते हैं। अगर वह धेला नहीं देता तो वह सिर्फ साला संबोधन पाएगा। वह साहित्य रचना से लेकर अध्ययन तक सभी कुछ आर्थिक लाभ के लिए करते हैं। ऐसे श्रीयुत गिडवानी आज भी हमारे समाज में कम नहीं, बहुत से भरे पड़े हैं। इसी तरह खजोहरा अपनी ठेठ शब्द योजना, ग्रामीण प्रसंगों, अपनी हास्य तथा व्यंग्य क्षमता के कारण अनुभव का एक सर्वथा नया आयाम उद्घाटित करती है। इस कविता की बुआ की उपमा एक जगह मजाक में निराला ने रविंद्रनाथ की विजयिनी से दी है। कहाँ विजयिनी का प्रातः स्नान और सौंदर्य का अद्भुत लास्यपूर्ण कोमल रूप, और कहाँ हथिनी की तरह पानी को हिलकोरती हुई बुआ, कुछ इस तरह से कि लहरें उनके डर से किनारे के ऊपर चढ़कर भागने की चेष्टा करने लगी। लेकिन निराला ने यह उपमा सिर्फ हंसी में ही नहीं दी है, उसका एक निश्चित मतलब है। वह खजोहरा की बुआ को रविंद्रनाथ की विजयिनी के समकक्ष रखकर उसी काव्य अभिजाति के सम्मुख अपना प्रतिपक्ष रखना चाहते हैं। इसी तरह नई भंगिमा, सर्वथा नई भाषा संरचना, काव्य अभिजात से पृथक सामान्य रूप में रहने देकर उसके अंदर से नग्न और भयावह यथार्थ को उजागर करने तथा तराशने वाले व्यंग्य के उदाहरण रूप में कुकुरमुत्ता के पहले संस्करण की कविता रानी और कानी अद्वितीय है। माँ उसको कहती है रानी, आदर से जैसा है नाम, लेकिन उसका उल्टा रूप, चेचक के दाग, काली नाक चिपटी, गंजा सर, एक आँख कानी, रानी अब हो गई सयानी, बिनती है, काढ़ती है, कूटती है, पीसती है, डलियों किसी ले अपने रूखे हाथों मिसती है, घर बुहारती है, करकट फेंकती है और घड़ों भरती है पानी। सुनकर कानी का दिल हिल गया, दाई आँख से आंसू भी बह चले माँ के दुख से, लेकिन वह बाई आँख कानी ज्यों की त्यों रह गई रखती निगरानी। पृष्ठ संख्या 208 मैंने पूरी कविता नहीं उद्धृत की, ऊपर वाले दो खंडों में भाषिक संरचना का अद्भुत और सर्वथा नया रूप दृष्टिगत होता है, बल्कि पुराने काव्यशास्त्र या आलोचना मानों के अनुसार कविता में प्रयुक्त अधिकांश शब्द वर्जित, भदेश, काव्य गुण विपन्न, देशज और न जाने क्या क्या कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पूरी कविता में जैसे उन्हीं के प्रयोग का आग्रह एक चुनौती के रूप में झलकता है, बल्कि शब्द यहाँ अभिव्यक्त ना करके अभिप्रेत मंतव्य का साकार चित्र खड़ा कर देते हैं। उनकी क्षमता यहाँ दर्शनीय है। नाक चिपटी काढ़ती है, बीनती है, कूटती है, पीसती है, से लेकर गंजा सर और एक आकानी के साथ माँ के द्वारा रानी संबोधन एक तीखे व्यंग्य और कठोर करुणा की सृष्टि करता है। काली नक चिपटी के साथ और घड़ों भरती है, पानी वाली श्रमशीलता और श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन की श्रमशीलता की अभिव्यक्ति में कितना बड़ा गुणात्मक अंतर है, यह आसानी से लक्ष्य किया जा सकता है। एक नग्न यथार्थ की कटु अभिव्यक्ति है तो दूसरी तोड़ती पत्थर यथार्थ को काव्य आभिजात्य देने का प्रयास। इसके अलावा तोड़ती पत्थर में व्यंग्य ना होकर एक मृत विवशता में तोड़ती पत्थर और वही सहने की उच्च शयता है। वहां पर रानी और कानी में अपना ब्याह ना हो सकने की बात सुनकर दाई आंख से माँ के दुख से रोने और बाई आंख कानी से इस करुणा पर जैसे निगरानी रखते हुए चुप रहने में व्यंग्य की भयानक तीखी नंगी और कटुमार अभिव्यक्त हुई है। अपना ब्याह न होने की विवशता का दुख कानी को उतना नहीं है जितना इस चिंता से माँ के दुख और परेशान होने का। कानी अपने लिए नहीं रोती बल्कि माँ के लिए अपनी साबुत आँख से रोती है और कानी आँख से चुप रहती है। इतनी अनुपम भिन्नार्थक डायनामिक और साथ ही इतनी छोटी कविता, इतनी अर्थ गर्भित मुझे हिंदी के समग्र आधुनिक काव्य में दूसरी नहीं मिली। इस तरह की अर्थ गर्भिता और अभिव्यक्ति का डायनामिज्म तथा नई भाषिक संरचना के उदाहरण स्वरूप कुकुरमुत्ता के पहले संस्करण की सारी कविताएं उद्धृत की जा सकती हैं। निराला के काव्य व्यक्तित्व के जिस रचना स्तर का आरंभ विधवा दीन तोड़ती पत्थर या भिक्षुक में हुआ उसका चरम विकास कुकुरमुत्ता में मिलता है। नए पत्ते एक तरह से अनुभव के इस नए आयाम को और अधिक प्रतिष्ठित करने के लिए प्रकाशित किया गया है। बाद की कविताओं में निराला का यह स्वर फिर कुछ कुछ क्षीण सा हो गया है और उन पर उनका गीतकार और प्रार्थना परक रूप तथा दैन्य करुणा व्यथा और अंत की अगाध विवशता हावी हो गई है। इस तरह कुकुरमुत्ता का यह प्रथम संस्करण भाव अभिव्यक्ति भाषा व्यंग्य और कट यथार्थ के पृष्ठ संख्या 209 कारण निश्चय ही हिंदी में एक नए काव्यमान एक नई शैली और एक सर्वथा मौलिक काव्य संपन्नता और स्वीकार की शुरुआत करता है। कुकुरमुत्ता का दूसरा संस्करण जैसा कि हम शुरू में ही सूचित कर चुके हैं सिर्फ एक लंबी कविता पुस्तक है, काव्य संग्रह नहीं। संभवतः सन 42 से 48 तक आते आते कुकुरमुत्ता की अर्थवत्ता को उतनी स्वीकृति मिल चुकी थी जितनी कि उसके स्वतंत्र रूप में पुस्तकाकार प्रकाशन के लिए आवश्यक थी। दूसरी ओर इसी भावभूमि पर लिखी गई नए पत्ते की कविताओं को और समग्र सार्थक और महत्वपूर्ण बनाने के लिए निराला ने इस प्रथम संग्रह की शेष 7 कविताएं इसमें डाल दीं। कुकुरमुत्ता की प्रसिद्धि और स्वीकृति का आभास इस दूसरे संस्करण की भूमिका से भी लगता है। इस संस्करण में दी गई भूमिका में कुकुरमुत्ता को संशोधित कहा गया है। कविता की महत्ता की स्वीकृति का यह संकेत दोनों संस्करणों की भूमिकाओं के टोन से साफ झलक आता है। पहले संस्करण में निराला लिखते हैं, इसमें वही शरीक होंगे जिन्हें न्योता नहीं भेजा गया। इसमें दिया गया संकेत साफ प्रकट है, अर्थात वह सामान्य जन जो इतने नाम रूपहीन और अविशेष और समूह हैं कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया जा सकता। भूमिका में आगे चलकर निराला की अकड़ और उनका अहम देखने लायक है, लेकिन उस संक्षिप्त सी भूमिका के अंदर से यह बात साफ झलकती है कि विशेष से संभवतः इस नई काव्य संपदा और भाषिक संरचना को स्वीकृति नहीं मिलेगी और वह निमंत्रित होकर भी इसकी उपेक्षा ही करेंगे। इन विशेष लोगों के काव्य संसार को एक ठोकर लगाने और उसकी परवाह ना करने की मुद्रा में और संभवतः उन्हें थोड़ा और चिल्लाने की गरज से निराला ने अपनी संक्षिप्त सी भूमिका का शीर्षक तक जियाफत दिया है। लेकिन दूसरे संस्करण में यह हट एक आत्मविश्वास में परिणत हो गया है। पहले संस्करण की भूमिका भी इसमें शामिल नहीं की गई है। असहमत होने वालों को गलत राह पर जाने वाला बताया गया है, साथ ही जनमत की प्रशंसा का भी उल्लेख है और इसका आश्वासन भी कि इस तरह की और रचनाएं भविष्य में सामने लाई जाएंगी। दूसरी ओर अति की सीमा तक जाकर उर्दू फारसी शब्दों के प्रयोग बाहुल्य पर एक रोक भी है। चूंकि इस दूसरे संस्करण की भूमिका में कुकुरमुत्ता को संशोधित संस्करण कहा गया है, इसलिए उत्सुकतावश मैंने प्रथम संस्करण से इसे मिलाकर देखना शुरू किया। कविता के इस दूसरे संस्करण में निराला ने 100 से ऊपर परिवर्तन किए हैं। पृष्ठ संख्या 210। यह परिवर्तन अपने आप में अत्यंत रोचक अध्ययन का विषय है, खासकर एक दूसरे परवर्ती लेखक के लिए। वह संशोधन परिवर्तन कहीं भाषा के मुहावरे को उचित रूप देने के लिए, कहीं भाषा को और अधिक रवां बनाने के लिए, कहीं लय के उचित और अनुरूप संधान के लिए, कहीं अर्थ व्यंजना को गहराई देने के लिए और कहीं कहीं अर्थ परिवर्तन के लिए किए गए हैं। लेकिन जिस कारण से मैंने इस परिवर्तन और संशोधन पर विद्वान पाठकों और समालोचकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस संदर्भ में कुछ लिखना आवश्यक समझा, वह इन परिवर्ती और संशोधनों में से लगभग आधे के प्रति मेरा आश्चर्य और एक सीमा तक मेरी विनम्र असहमति है। जहाँ तक उपर्युक्त कारणों से परिवर्तन या संशोधन किए गए हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जगह जगह इन परिवर्तनों से लय भंग हो गई है, या सही मुहावरा गलत हो गया है, या भाषा की रवानी की जगह एक सपाट विवरणात्मकता ने ले ली है। जगह जगह इन परिवर्तनों से एक सुघड़ अव्यक्त स्थिर जड़ और प्रवाहहीन हो गई है। उचित या अनुचित मेरी दृष्टि में दोनों प्रकार के संशोधन परिवर्तन कहीं शब्दों की जगह बदलकर एकाध नया शब्द घटा बढ़ाकर क्रियापद पूर्वकालिक क्रिया बढ़ाकर शब्दों की वर्तनी में परिवर्तन करके पर्यायवाचियों के द्वारा या उपसर्ग प्रसर्ग बदलकर किए गए हैं। कहीं कहीं ये परिवर्तन उर्दू के लहजे या उसकी अप्रचलित मुहावरेदानी को हटाने के लिए भी किए गए हैं। मैंने इन परिवर्तनों पर बहुत कुछ सोचा, अपने को तर्क से राहत देने की कोशिश की। मैं उनके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों या उद्देश्यों की तह में जाने की कोशिश करता रहा। मैंने निराला की विक्षिप्तता की बात भी सोची, लेकिन इस संबंध में मेरे लिए कोई भी निर्णय दे सकना कठिन है। कविता का अपने नए नए रूप या नई से नई और यहाँ तक कि सर्वथा अछूती भाषिक संरचना और यथार्थ के कटुतम रूपों में भी कविता होना निराला अपना पहला कर्तव्य मानते हैं। कविता में परिवर्तन और संशोधन भी उसे पूर्ण बनाने के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। स्वयं इसी कविता में निराला ने इस तरह के सुखद और गहरे और अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन किए हैं। वैसे हिंदी छपाई में प्रेस और प्रूफ रीडर अक्सर अपना घटिया रोल अदा करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन इतने सारे असुखद परिवर्तनों को प्रेस या प्रूफ की गलती मानकर संतोष नहीं किया जा सकता। इस तरह के कुछ आश्चर्यजनक और अनुचित परिवर्तनों के उदाहरण विद्वान पाठकों और जागरूक समालोचकों के सामने रखे जाते हैं। प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण। प्रथम संस्करण में एक गले लग लग हवा चलती मंद मंद। द्वितीय संस्करण, गले लगकर हवा चलती मंद मंद। प्रथम संस्करण दो, पेट में डंड पेलते चूहे जवां पर लफ्ज प्यारा। दूसरे संस्करण में दो, पेट में डंड पेले हों चूहे जवां पर लफ्ज प्यारा। प्रथम संस्करण में तीन, सिट पिटाई देख कर ज्यों अड़गड़े में मर्द को राह पर ज्यों बाबू उठती गर्द को। द्वितीय संस्करण में तीन, सिट पिटाई जैसे अड़गड़े में देखा मर्द को बाबू ने देखा हो उठती गर्द को। पहले संस्करण में चार पैर सिर पर रख वह पीछे को भागा, द्वितीय संस्करण में चार पैर सर रखकर वह पीछे को भागा, प्रथम संस्करण पांच लेकिन कुछ एक घूंट लार के, द्वितीय संस्करण पांच लेकिन यह कुछ एक घूंट लार के, प्रथम संस्करण छः गुस्से में आ कांपने लगे नवाब, द्वितीय संस्करण छः गुस्सा आया कांपने लगे नवाब, प्रथम संस्करण सात कुकुरमुत्ता उगाए नहीं उगता, द्वितीय संस्करण सात कुकुरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता। ये कुछ उदाहरण हैं। पहले उदाहरण में गले लग लग और गले लगकर की अभिव्यंजना में आकाश पाताल का अंतर है। एक फूल अथवा एक कली से फिर दूसरी कली के गले लग लग फिर हवा के आगे बढ़ जाने में विलास का एक मनोहारी चित्र खींचा गया है। यह नवाब के बाग का वर्णन है। दूसरी ओर गले लगकर चलना संपूर्ण अभिव्यक्ति को लगभग रिक्त कर देता है। गले लगकर सोने का मुहावरा होता है, मंद मंद चलने का नहीं। दूसरे उदाहरण में पेलते व्याकरण से बिल्कुल ठीक है, जबकि पेले हों का कोई अर्थ या अर्थ विस्तार या सूक्ष्म व्यंजना समझ में नहीं आती। तीसरा उदाहरण लय सौंदर्य प्रथम संस्करण और लय भंग द्वितीय संस्करण का है। इस तरह से लय को तोड़कर निराला का उद्देश्य क्या है, यह कहना लगभग असंभव है। चौथे उदाहरण में पहले संस्करण में मुहावरा ठीक है, दूसरे में व्यर्थ हो गया है, पांचवें में यह निरर्थक है और लिंग दोष प्रकट करता है, छठे में गुस्से में आ कांपने लगे मुहावरा या भाषिक संरचना सही है, गुस्सा आया कांपने लगे अप्रचलित प्रयोग है, सातवें में कुकुरमुत्ता उगाए नहीं उगता एकदम ठीक है, उगाया नहीं उगता बात बनाए न बने गालिब नहीं है। इसके अलावा अब शब्द अर्थ गरिमा को घटाता है और सत्य को सामयिक मात्र बना देता है। इस तरह के लगभग 50 एक संशोधन तो होंगे ही जहाँ कविता सपाट हो गई है या अर्थभंग हो गया है। पृष्ठ संख्या 212। ऊपर के उदाहरण मैंने इसलिए यहाँ रखे हैं कि मैं पूर्वग्रही नहीं हूँ, ना ही मैंने कुछ का कुछ साबित कर देने के लिए अपने तर्क कौशल का सहारा लिया है। अक्सर मेरे दिमाग में एक बात आती है कि इस तरह की सपाटता से निराला क्या करना चाहते हैं। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसके पक्ष में अपने तर्क कौशल का उपयोग कर भी डालूं तो उन शेष परिवर्तनों संशोधनों का क्या होगा जहां एक सूक्ष्म अर्थ के प्रसार, लय की एकान्विति, भाषा के निखार अथवा एक पंक्ति के संपूर्ण भाव कौशल को डायनामिक बनाने के लिए पूर्णतः उपर्युक्त परिवर्तन निराला ने किए हैं, और दोनों को किसी एक ही तर्क से सही साबित करने का दुस्साहस मेरे अंदर नहीं है। निराला की प्रखर और अद्वितीय प्रतिभा में अटूट विश्वास रखते हुए भी मैं इस तरह की अंधभक्ति का कायल नहीं हूँ। यह सारा प्रसंग कुकुरमुत्ता कविता के ऐतिहासिक, अर्थगत, भावगत, भाषिक और शिल्प संबंधी सूक्ष्म परिवर्तन को साहित्य के विद्वान पाठकों, निराला के अध्येताओं और पूर्व ग्रह रहित ईमानदार आलोचकों तक पहुँचाने के लिए रखा गया है, क्योंकि इसके बिना कुकुरमुत्ता का अध्ययन कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। कुकुरमुत्ता के संदर्भ में निराला की प्रगतिशीलता की खोज और छानबीन बार बार की गई है। अक्सर उनकी कविताओं को लेकर उन्हें इस खेमे या उस खेमे में डालने के हास्यास्पद प्रयत्न हुए हैं और अति की सीमा तक उनकी निंदा या प्रशंसा हुई है। इससे और कुछ हुआ हो या नहीं, निराला के संपूर्ण काव्य व्यक्तित्व की सही समझ में बहुत बाधा पहुंची है। लगभग पिछले 30 वर्षों तक इस तरह के धुंधले और कुरूप प्रयत्नों के बाद अब हिंदी के पाठक, ईमानदार आलोचक और सही समझ के काव्य मर्मज्ञों ने इस बात को महसूस किया है कि निराला के संपूर्ण काव्य रचना को उनके व्यक्तित्व और उनकी अनुभव संपन्नता के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए, जिसे प्रगतिशील आंदोलन की पारिभाषिक शब्दावली में प्रगतिशील कहा जाता है, उसे निराला के संदर्भ में सामान्य की प्रतिष्ठा अथवा उपेक्षित का उन्नयन कहना मैंने ज्यादा उपयुक्त समझा है। प्रगतिशील शब्द में एक भ्रामक व्याख्या के पनपने की आशंका हर क्षण बनी रहती है। सामान्य की प्रतिष्ठा की उत्कट लालसा निराला के संपूर्ण काव्य और चरित्र में विद्यमान है। इस चरित्र निष्ठता का आधार एक ओर तो सत्य है, यथार्थ सामान्य का कोई भावुक या संदर्भ नहीं, जिसकी चर्चा काव्य और काव्यलोचन में प्रगतिशील आंदोलन के दौरान बहुत अधिक मिलती है। दूसरी ओर उस यथार्थ की काव्यात्मक परिणति है। निश्चय ही काव्यात्मक परिणति की यह शर्त छायावादी काव्य के अभिजात संस्कारों से भिन्न पृष्ठ संख्या 213 और सर्वथा नई है। इस तरह सामान्य की प्रतिष्ठा की इस उत्कट लालसा और प्रतिज्ञाबद्धता से निराला एक सर्वथा नई काव्य शैली, नए काव्यमान और एक अभूतपूर्व कविता का उद्घाटन हिंदी में करते हुए दिखाई देते हैं। सतही और पक्षधर वाद विवादों में निराला के इस युग पुरुष रूप के इतिहास को जिस तरह लगातार दबाया गया और गलत व्याख्याओं और निर्णयों के आधार पर जिस तरह इसका श्रेय दूसरे प्रचारवादी और गौण कवियों को दिया गया वह दुखद है। वैसे इस तरह का गलत इतिहास बहुत दिनों तक नहीं चलता और आगे आने वाली पीढ़ियां उसे समूल उखाड़ फेंकती हैं। तो फिर कुकुरमुत्ता का संपूर्ण अध्ययन उनके काव्य व्यक्तित्व की विराटता के संदर्भ में ही किया जाना उचित है। इसका संकेत इस भूमिका के शुरू वाले हिस्से में भी हम कर चुके हैं। निराला की एक कविता की प्रथम पंक्ति है, बंदी गृह वरण किया जनता के हृदय जिया। यह पंक्ति संपूर्ण रूप से उनके व्यक्तित्व की उस निष्ठा और आत्मश्लाघा तथा अहम से रहित पवित्रता और विवशता को व्यक्त करती है, जिसके फलस्वरूप निराला अपनी कविता में बार बार उपेक्षित के प्रश्न से टकराते हैं। अपने चारों ओर के संदर्भ पर स्थितियां, घटनाओं, इतिहास और वातावरण को निराला ने बंदी गृह नाम दिया है। यह शांत सत्य अपने आप में अत्यंत कठोर और भयावह है। वहां मुक्ति नहीं है, निरापराध होते हुए भी अपराधी की स्थिति में दंड का भागीदार होना है। और तभी बल्कि इसी तरह जनता के हृदय जिया जा सकता है। सामान्य को अपनी करुणा तभी दी जा सकती है, उसे तभी पाया जा सकता है जब इस देश को एक बंदी गृह की तरह कभी अपना ले, उसका वरण कर ले। इसे निराला ने जीवन विषम लिया से और अधिक स्पष्ट किया है। इतिहास की सारी धूल, सारी गलाजत और टूटे हुए देश का सारा विष, यथार्थ की संपूर्ण भयावहता का यह स्रोत निराला के आंतरिक और संगठित व्यक्तित्व से ही छनकर आता है। उसे कहीं बाहर जाकर या किन्हीं सिद्धांतों की आड़ लेकर ढूंढना अथवा व्याख्यायित करना गलत इतिहास में एक पन्ना और जोड़ने के समान होगा। क्या इतिहास की उस गजालत को आज का नया कवि भी उसी तरह भुगत रहा है? निराला के उस बंदी गृह वरण करने की प्रतिध्वनि और उसकी सत्यता आज भी एक कवि प्रमाणित करता है। यह सामान्य की कोई नई प्रतिष्ठा नहीं, निराला द्वारा उद्घाटित उस काव्य सत्य की ही लौटती हुई अनगूंज है। घृणा में डूबा हुआ सारा का सारा देश, पृष्ठ संख्या 214। पहले की तरह आज भी मेरा कारागार है।